मुने विद्यारण्य स्वामी विरचित एवं स्वामी भारती तीर्थ महाराज द्वारा परिपूरित पंचदशी ग्रंथ के ध्यान दीप प्रकरण का विचार चल रहा था, जिसके 35वां श्लोक है ना, 34वें श्लोक पर विचार संपन्न हो गया था। इहे वा अमूत्र वा विद्येति एवं सूत्र कृतोदितम् श्रणवंतोपि अत्र बहुओ यत् न विद्युरिति श्रुति। इस पर विचार हो गया था, प्रसंग हमारा चल रहा था कि ज्ञान इसी जीवन में हो जाएगा कि नहीं। बार बार विचार करें, आवृत्ति करते रहे तो हो तो जाएगा ना ज्ञान। तब यहां कहने लगे कि भाई गारंटी तो नहीं ले सकते कि इसी जीवन में ज्ञान हो ही जाएगा। क्यों नहीं ले सकते? कहा तुम्हारे सामने कितनी मजबूत दीवार खड़ी है इसका हमको पता नहीं, जो पार हो ही जाओगे। हां यदि हल्की फुल्की दीवार होगी तो लात मार करके तोड़ करके निकल जाओ, पर बहुत बड़ी मजबूत दीवार है और नहीं तोड़ पाओ तो जब टूटेगी तब जाकर के काम बनेगा। प्रतिबंध की जो दीवार है वही बताया गया। इहे वा अमूत्र वा विद्यति इति सूत्रो कृतोदितम्। एकमप्य अपस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात् जो सूत्र आया है ब्रह्म सूत्र में कि यहीं भी ज्ञान हो सकता है और नहीं भी हो, ऐसा देखने में आता है। प्रतिबंध हो तो न भी हो। और दूसरी बात, केवल ब्रह्म सूत्र में ही नहीं श्रुति में भी कहा है कि श्रणवंतोपि अत्र बहु यमन विद्युः, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं, उसके पीछे कारण प्रतिबंध ही है। इस प्रकार से जन्मने श्रवणादि कर्तुः जन्मांतरे अप्रोक्ष ज्ञानं भवति इति अत्रापि। इस प्रकार से यह जन्मने श्रवणादि कर्तुः, जिस व्यक्ति ने इस मनुष्य जीवन में श्रवण आदि श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, निधिध्यासन तक पहुंच गया फिर भी आवरण निवृत्ति नहीं होती, कमी रह जाती है, तो इस जन्म में श्रवण आदि करतो माने श्रवण मनन निधिध्यासन आदि जो करने वाले हैं उनको जन्मांतरे अप्रोक्ष ज्ञानम भवती। जन्मांतर में जाकर के अप्रोक्ष ज्ञान होता है, ऐसा भी देखने में आया है। गर्भेण सन नन्वेषाम वेदमहम देवानाम जनिमान विश्वा, ये ऐतरेय उपनिषद में वामदेव ऋषि कहते हैं मातृ गर्भ में शयन करते हुए ही, गर्भ में पड़े हुए ही कहते हैं कि एषाम वेदा वेदम अहम देवानाम जनिमान विश्वा, ये जो संपूर्ण देव जन्म है इन सबको मैं यहां जान गया। और उसी प्रसंग में कहा कि वो पक्षी की तरह जैसे शयन पक्षी वो जाल को काट करके मुक्त हो जाता है, मैं अब जन्म रूपी सारे बंधनों को काट करके मुक्त हूं, इस चीज का वो अनुभव करते हैं वहां पर। तो इत्यादि काम श्रुति जो है अर्थतः पठती, उसको अर्थ से ज्यो का त्यों तो नहीं पढ़ रहे हैं, शब्दतः नहीं अर्थतः पाठ किया जा रहा है। शब्दतः पढ़ने में तो जैसा लिखा हूबहू वैसा का वैसा पढ़ना, और अर्थतः लिखने पढ़ने में उसके भाव को लेकर के लिखना। प्रायः जितने भी स्मृति ग्रंथ होते हैं वो वेद के जो मंत्र हैं उनको अर्थतः ही लिखा गया है। आप गीता में देखो, कठोपनिषद के कई सारे मंत्र ऐसा लगता है कि उन्हीं को बोल रहे हैं, पर कहीं न कहीं थोड़ा अंतर आ जाता है, इसलिए कि शब्दतः नहीं वहां अर्थतः पाठ होता है। उसी अर्थ को लिखा गया है जो वेद में लिखा गया है, यही यहां पर इसी प्रकार से है। 35वें श्लोक में देखो, वही बात मैं जो बता रहा था आपको, गर्भ एव शयान सां वामदेवो व बुद्धवान् पूर्वाभ्यस्त विचारेण यद्वद्धेना नादिशो गर्भ एव शयान सन् वामदेव अवबुद्धवान्। गर्भ में शयन करते हुए ही वामदेव ऋषि ने बौद्ध प्राप्त किया है। कहते हैं गर्भ में वहां श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया। बोले वहां तो कुछ नहीं किया, न श्रवण है, न मनन है, न निधिध्यासन है। हो सकता माने किया हो, संस्कार तो जग जाते हैं, देश काल वस्तु को पाकर के संस्कार जग भी जाते हैं, उस अर्थ में भले ही ले लो, पर स्वयं ने तो क्या श्रवण किया है? वहां श्रवण मनन निधिध्यासन करने का अवसर नहीं है, पर वहां जाकर के उनको बोध प्राप्त हुआ है। हां, संस्कार उद्भूत होने में, उसको प्रकट होने में कोई निमित्त बन गया वो अलग बात है। जग जाते हैं संस्कार तो, और संस्कार उस समय जो जगते हैं जीवन में वही काम देते हैं। इसलिए बहुत भागवत में तो कई सारे प्रसंग इस तरह से आते हैं। राजा अंग थे, बड़े धार्मिक पुरुष थे, यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में देवता नहीं आए तो कहा कि क्यों? बोले निसंतान हो। तब कहा कि फिर पुत्र प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करो, पर संतान प्राप्ति के लिए अंग से यज्ञ करवाया गया, और जिसके परिणाम से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम हुआ वेन। राजा बड़े धार्मिक थे और वेन अति दुष्ट था, ठीक बिल्कुल उसके विपरीत था। तो धार्मिक राजा का बीज, अरे मक्का का दाना डालो तो मक्का की ही फसल होती है, गेहूं का दाना डालो तो गेहूं की ही फसल होती है, बरगद का बीज होगा तो उससे पीपल नहीं निकलेगा, बरगद ही निकलेगा। तो एक धार्मिक सज्जन पुरुष थे तो फिर उससे इतना दुष्ट व्यक्ति कैसे पैदा हो गया? तब कहा कि वो गर्भ में गड़बड़ हो गई, जन्मदात्री जो मां थी वो दैत्य वंश की थी, विचार अच्छे नहीं थे, इसलिए मां के विचार वहां पर उस पर प्रभाव डाल गए। जो अच्छे संस्कार थे पिता के वो तो उद्भूत नहीं हुए, और मां के विचारों को पूर्व के उसके भी खोटे कर्म होंगे, और फिर मां के विचार उसमें मिल गए तो वेन जैसा दुष्ट पैदा हो गया। अब ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी मां भी तो महान होगी, कितने पवित्र होगी मदालसा के जैसी, इसलिए मां के गर्भ में ही उनको ये बोध हो गया, ये सारे बंधनों को काट करके अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हुई। मां एक निमित्त बनती है संस्कारों को प्रकट करने में, हो सकता मान लीजिए, लेकिन उस समय जिस जीव के संस्कार जगे हैं उसका अपना क्या पुरुषार्थ था? स्वयं का तो कोई पुरुषार्थ नहीं था, उस समय कोई पुरुषार्थ किए बिना ही उनको ब्रह्मनिष्ठा कैसे प्राप्त हो गई गर्भावस्था में? उस अवस्था उस स्थिति को तो नरक माना जाता है। रौरव कुंभीपाक अशिवन पत्र नरक आदि के जितने वर्णन होते हैं, यदि विचार करके देखते हैं तो जीव को मातृ गर्भ में वो सारे ही नरक भोगने पड़ते हैं, और उस स्थिति में जाकर के भी उसको अनुभव हो गया वामदेव ऋषि को, उस पवित्र आत्मा को, उसका कारण क्या था? तो उत्तरार्ध में यहां पर बता रहे हैं, पूर्वाभ्यस्त विचारेण। कहते हैं कि उस समय तो कोई विचार नहीं किया गया था उनके द्वारा, लेकिन पूर्व में बार बार जो अभ्यास किया गया था, तो अभ्यास किए गए विचारों के द्वारा ही, किसका अभ्यास हुआ, वह विचारों का ही अभ्यास किया था। श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि जो पूर्व जन्म में विचारात्मक जो उनका अभ्यास हुआ था, उस विचार के द्वारा ही यदवद अध्ययनादिशु, जिस प्रकार से कहते हैं कि अध्ययन करते हैं, तो कई बार वो अध्ययन किया हुआ याद नहीं आता है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, अध्ययन करते हैं भूल जाते हैं। मेरे सामने बहुत बार होता है, खास करके किसी के नाम के संबंध में मेरी हिस्ट्री बहुत कमजोर है। विद्यार्थी जीवन में भी पढ़ता था तो सबसे कम नंबर मेरे इसी में आते थे, मुझे नाम याद न रहे। कोई होगा प्रतिबंध, मुझे भी पता नहीं। अब होता क्या कि किसी व्यक्ति का नाम पूछ लिया, उसका कई का तो कई बार नाम पूछ लेता हूं और फिर भूल जाता हूं। कभी कभी सवेरे सवेरे कोई ऐसी भर्ती बन गई तो उस आदमी का नाम याद आ जाता है। शाम को इतना कोशिश किया कि उसका नाम क्या है क्या है क्या है क्या है, कितना सोचा, इधर उधर से मिलाने की कोशिश की। एक बार महाराज श्री जी कहते थे कि मैंने वृंदावन वाले स्वामी जी महाराज से पूछा, श्रद्धेय अखंडा जी महाराज से, कि आपको सबके नाम कैसे याद रह जाते हैं। एक बार नाम पूछ लिया, भूलते नहीं। तो स्वामी जी बोले कि मैं कोई प्रसिद्ध, मेरा पहला सा पहले परिचित नाम होता, उस नाम के साथ में जोड़ देता हूं कि उसका जो नाम था ये इसका भी वही नाम है, फिर याद रह जाता है। एक तरीका मैंने वो तरीका करके भी देखा, जिस नाम के साथ जोड़ता हूं उसको ही भूल जाता हूं, बड़ी मुसीबत। परंतु कभी कभी अचानक उस व्यक्ति का नाम याद आ जाता है। जब प्रयास कर रहे हैं तब तो याद रहता नहीं, कितनी आवृत्ति करते तो भूल जाते हैं, और कभी फिर अपने आप को याद आ जाता है, बिना प्रयास के याद आ जाता, सहज में याद आ जाता नाम। तो वही उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। अब जैसे नाम का अभ्यास, ऐसे अध्ययन का अभ्यास, कई श्लोक हैं, कई मंत्र हैं, खूब अभ्यास करते भूल जाते, अभ्यास करते भूल जाते, कभी कभी अनायास आ जाता है। वो उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। क्यों याद आता है? जब कोई प्रतिबंध हट जाता है, वो बाधक जो बरती है हट जाती है, तब वो याद किया हुआ, जैसे लैपटॉप में सब होता है, कोई वायरल आ जाता है उसको हटाओ तो जो चाहते हो निकल करके आ जाएगा। तो कभी कभी मस्तिष्क में वायरल आता है कि नहीं, साधना में भी आ जाता है, उसी का नाम प्रतिबंध है। यह जन्मने उत्पन्नस्य ज्ञानस्य कालांतरो उत्पत्तौ दृष्टांतम आह। यह जन्मने उत्पन्नस्य ज्ञानस्य, जो इस जन्म में उत्पन्न ज्ञान है, उस ज्ञान का कालांतर उत्पत्तौ, समय पाकर के बाद में उसकी उत्पत्ति होना, और बीच में विस्मृति हो गई, अभ्यास यहां किया और वहां जाकर के फिर याद आया। इसका अर्थ यह एक बात स्पष्ट है कि यह जन्मने उत्पन्नस्य ज्ञानस्य कालांतरे उत्पत्तौ, इस जीवन में जो उत्पन्न ज्ञान है कालांतर में उसी की उत्पत्ति होती है। जिसको कभी अभ्यास में ही नहीं लाए, कभी बाद में याद आएगा, वो उसी की याद आएगी जिसको हमने अभ्यास किया, चिंतन किया है। ठीक है, इस बार स्थिर नहीं हो रहा है, प्रतिबंध हटने के बाद हमारे अंतकरण में आएगा, परंतु उसके लिए अभ्यास की तो जरूरत है ही है। धैर्य पूर्वक सतत अभ्यास बहुत जरूरी है साधना में, धैर्य पूर्वक सतत अभ्यास अनिवार्य है। ये नहीं कि फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा, फिर वही होगा जो अभी हम कर रहे हैं, अभी का अभ्यास उस समय जाकर के प्रकट होगा। इसलिए अभ्यास की तो बहुत बड़ी जरूरत है, और उसको धैर्य पूर्वक करने की जरूरत है। एक बहुत अच्छा उदाहरण किसी महापुरुष ने दिया कि नारद जी महाराज कहीं विचरण कर रहे थे तो एक तपस्वी मिले, ऐसा कठोर तपस्वी, सर्दियों में हिमालय में बैठ करके तप करने वाला बर्फ पर बैठ करके तप करे, गर्मियों में पंचाग्नि जला करके बैठ करके तप करे, बरसात की झड़ियों में खुला बैठ करके तप करे, उसको देख करके नारद जी भी आश्चर्यचकित हुए और नारद जी महाराज कहने लगे, तपस्वी जी आपका दर्शन करके तो मैं भी धन्य हो गया, पर आप मुझे जानते हैं मैं नारद हूं और यहां से मैं भगवान नारायण के पास जा रहा हूं, आपकी ओर से कोई विशेष भगवान के लिए संदेश भेजना हो बोलिए। उस तपस्वी ने कहा, नारद जी यदि आप भगवान के पास जा ही रहे हैं तो भगवान से ये पूछना मेरे लिए कि मुझे दर्शन कब होंगे, साक्षात दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा, मैं जरूर पूछ करके वापस आप करके आपको जवाब दूंगा। जा रहे थे थोड़े आगे तो एक पेड़ के बरगद के वृक्ष के नीचे कोई एक महात्मा स्वाध्याय करवा रहे थे, ब्रह्मचारी बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, वेदांत चिंतन हो रहा आराम से मस्त। नारद जी भी बैठ करके सुनने लगे, बाद में प्रणाम किया, परिचय हुआ। नारद जी कहने लगे, महाराज मैं सीधे भगवान के पास में ही जा रहा हूं, कोई संदेश हो तो कहिए। स्वाध्याय करवाने वाले संत ने कहा, आप भगवान के पास जा रहे हो तो जरा ये पूछना कि उस परमात्मा का साक्षात्कार कब होगा, साक्षात दर्शन कब होंगे। वही सवाल उनका। नारद जी बोले, मैं जा रहा हूं, एक और महात्मा का भी सवाल है, दोनों का पूछ करके आऊंगा। जाकर के भगवान से कहा कि भगवान, मरते लोक में गया और दो संतों को देखा, एक तपस्वी था और एक स्वाध्यायी था। तपस्वी तो ऐसी तपस्या कर रहे थे, क्या बताऊं आपको, बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपको पाने के लिए कितना कष्ट झेलते हैं तपस्वी लोग। उन्होंने जानना चाहा कि आप उनको दर्शन कब दोगे, कब देंगे भगवान बताइए, उनको जवाब देना है। तो भगवान ने कहा, उस महात्मा को तपस्वी को बोल देना, जिस प्रकार से इस जीवन में तप कर रहा है, तीन जन्म तक तप कर लेगा तो चौथे जन्म में दर्शन दे दूंगा। तीन जन्म तक तप करना है, चौथे जन्म में दर्शन दे दूंगा। फिर कहा, एक महात्मा दूसरे स्वाध्याय करवा रहे थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के, उनका भी यही सवाल था, उनको दर्शन कब देंगे। भगवान बोले, उनको बता देना हो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस बरगद के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने बार जन्म लेगा, उसके बाद में फिर मैं दर्शन दे दूंगा। गए नारद जी महाराज ने जिसका पहले का सवाल था उसको उत्तर दिया, कहा बड़ी खुशी की बात है कि तीन जन्म साधना और करनी है और आपको दर्शन हो जाएंगे। भगवान ने बोला, वो तो वहीं बिफर गया, बड़ा आग बबूला हो गया, तू झूठा, तेरा भगवान झूठा, तीन जन्म पता है कितने कठोर साधना कर रहा हूं, वो किस बात का भगवान है, फिर किस बात का करुणा निधि है, किस प्रकार का दयालु है भगवान, इतने भी दया नहीं आती, मैं कितना तप कर रहा हूं, दर्शन देने में क्या बिगड़ रहा है, जाने दो ऐसे तप को, छोड़ दिया, देना होगा तो देगा, मैं तप ऊपर नहीं करता। नारद जी को बड़ी पीड़ा पहुंची, तीन जन्म की बात वाले को इतनी पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ, इतना दुखी हो गया। अब वो जिसके पत्ते पत्ते पेड़ पर जितने हैं उतने बार जन्म लेने की बात कही गई, उसको कहूंगा तो शायद वो तो बेचारा वहीं मर जाएगा, बड़ा संकोच होता रहा, पर जाना था नारद थे, जवाब तो देना है। जाकर के पूछा नारद जी महाराज ने, दोनों मिले तो संत ने कहा, बाबा पूछ के आए कब दर्शन देंगे, बोले आप विश्वास रखो दर्शन हो जाएंगे। बोले नहीं, विश्वास तो है पर मैंने तो ये कहा था कि कब होंगे दर्शन, ये बताओ। अब नारद जी डरे, कहे मैं कहूं कि इतने जन्म के बाद होगा, बेचारे का अटैक आ गया तो। बोले महाराज आप धैर्य रख सको तो मैं बताऊं। बोले बिल्कुल धैर्य आप बताइए तो सही, कहा इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतनी बार जन्म लोगे, उतनी बार स्वाध्याय करोगे और उसके बाद में फिर परमात्मा का दर्शन होगा, ऐसे भगवान बोले। वो महात्मा तो नृत्य करने लग गए, खुश हो गए, वाह वाह, ओहो भगवान के दर्शन होंगे, जरूर होंगे, कोई नहीं कितने वर्ष निकल गए, जन्मों में साधना की है तो आज यहां तक पहुंचे हैं और साधना करते रहेंगे, क्या है विद्या में जल्दीबाजी क्या है, खुश हो गए। बताइए उस महात्मा को कितना धैर्य होगा। स्वाध्याय में इसी धैर्य की जरूरत है। धैर्य और निरंतरता दो चीजें स्वाध्याय में बनी रहनी चाहिए। इसलिए अध्ययन आदि का दृष्टांत देकर के कहते हैं यह जन्मनि उत्पन्नस्य ज्ञानस्य, इस जीवन में जो उत्पन्न ज्ञान है उसका कालांतरोत्पत्तौ, कालांतर में उसकी उत्पत्ति होती है। हाँ, साधना तो ये अनुत्पन्न ज्ञान से, साधना इस जीवन में हुई है लेकिन ज्ञान पैदा नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ इसका। ज्ञान का अर्थ परोक्ष ज्ञान तो हो गया है पर साक्षात्कार ज्ञान नहीं हुआ। तो साक्षात्कार ज्ञान इस जीवन में जिसको नहीं हुआ पर साधना हुई है और कालांतर में उसकी उत्पत्ति हो जाती है, तो वहां पर जाकर के अभ्यास नहीं, अभ्यास तो यही का काम कर रहा है। दृष्टांत विवरण होती, जो दृष्टांत दिया गया अध्ययन आदि का उसी का यहां पर एक विस्तार करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देख लो, कोई बहुत खास कठिन बात नहीं है यहां पर सब। बहुवार अधीते तदा नायाति चेत पुनः दिनांतरेण अधीतेव पूर्वाधीतं स्मरेत पुमान। बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत् पुनः दिनांतरेण अधीतैव पूर्वाधीतं स्मरेत पुमान। बहुवारं अधीतेऽपि तदा न आयाति चेत पुनः। चेत माने यदि, बहुत बार अध्ययन करने पर भी और पुनः तदा न आयाते, उस समय जब आपको जरूरत है, आप चाह रहे हो कि जिसका अध्ययन किया वो स्मरण आ जाए, पेपर करने के लिए बैठा विद्यार्थी, अब बेचारा चार छह महीने पढ़ाई किया और जब पेपर देने बैठा तो भय के मारे ही भूल गया। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन पेपर देते समय घबरा जाते हैं, याद किया हुआ भी भूल जाता है और पेपर देकर के बाहर आने के बाद वो उसको याद आ जाता है। अरे उस समय बहुत सोचा याद नहीं आया, अब याद आ गया, पर अब क्या है, है? का वर्षा जब कृषि सुखाने खेत, फसल सूख गई वो वर्षा होने से क्या है, ऐसा पश्चाताप करता है। तो यहां कहते हैं बहुबारम अधीतेपि, क्यों महेंद्र जी ऐसा ही होता है ना, कल परसों मैंने कहा अचानक भजन गाओ, भजन गाने के लिए बैठ तो गया पर वही बात हो गई। अब रूम में जाकर के कहते स्वामी जी मुझे पूछ लो पूरा भजन याद है, मैंने कहा अभी याद है तो क्या हो गया, उस समय तो भूल गए। वही बात है यहां पर, उसी का उदाहरण है। बहुवारम अधीतेपि तदा न आयाति चेत पुनः। यदि ऐसा होता है कि बहुत बार अध्ययन करने पर भी जब वो फिर आता नहीं है जिस समय उसकी आवश्यकता होती है, प्रतिबंध है, प्रतिबंध प्रतिबंध है, कोई दूसरे विचार इतने प्रबल हो जाते हैं, जैसे भय वृत्ति बढ़ गई तो जो स्मरण शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। दिनांतरे अनधितेयव पूर्वाधितम स्मृत पुमान, परंतु वही पुरुष वही मनुष्य क्या करता है, दूसरे अन्य दिन में, दिनांतरे दूसरे दिन में अनधितेयव, अरे उसने अध्ययन किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है और बिना अध्ययन किए हुए भी पूर्वाधीतम स्मृत, जिसको पहले अध्ययन किया है पढ़ा है उसकी स्मृति हो जाती है मनुष्य को। तो जब कभी कहते हैं कि बहुत बार अध्ययन करने पर भी उस वक्त वो कंठस्थ नहीं होता, याद नहीं आता है, बार बार आवृत्ति करने पर भी याद नहीं आता, और कभी कभी अन्य समय में बिना विचार किए अनायास किसी प्रसंग वशात याद आ जाता है, उसकी स्मृति आ जाती है। इसी प्रकार से दृष्टांत दिया है कि ज्ञान भी यहां पर अभ्यास करते रहे लेकिन वो ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, और समय आएगा तो अनायास फिर बिना साधन के भी ज्ञान हो जाता है, उसकी स्मृति हो जाती है। आदि शब्देन परिगृहितानि दृष्टांतरम अंतराणि आह। आदि शब्देन परिगृहितानि दृष्टांतर अंतराणि आह। आदि शब्द कहां आया है? अध्ययन आदिशु 35 में आया ना, 35 में जो आया उसी को यहां पर उसका विस्तार कर रहे हैं। अध्ययन आदिशु, आदि में माने और भी लेते हैं ना, तो इसका अर्थ एक तो ये ले दिया जो बार बार अध्ययन किया हुआ है, प्रयास करने पर भी नहीं आया। आदि शब्देन परिगृहीताने दृष्टांतराणि आह, उसी को ग्रहण करते हुए अन्य और एक दृष्टांत लेते हैं। आदि में तो जितना चाहे उतना ले सकते हैं ना, इसका तो पेट बहुत बड़ा आदि शब्द का, तो जितने उदाहरण चाहो उतने उदाहरण ले लो, इसमें डाले जा सकते हैं। कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयो यथा तदवदात्म विचारोपि शनै कालेन पच्यते। बहुत सुंदर दृष्टांत है। कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयो यथा, यथा कृषि गर्भादय कालेन परिपच्यन्ते, जैसे कृषि है गर्भ है ये समय के द्वारा ही परिपक्व होते हैं, पकते हैं, पक करके तैयार होते हैं। समय का अर्थ क्या होगा? काल, और काल का अर्थ समय जड़ है कि चेतन है? तो जड़ समय पकाता है। कालेन परिपच्यन्ते, काल के द्वारा ही पकते हैं ऐसा लिखा है। तो गर्भ जो तैयार हुआ है समय आने पर बालक पैदा हो रहा है, फसल जो पक रही है समय आने पर ही पकती है, पहले कच्ची होती है। कौन पका रहा? कहते काल पका रहा है। इस शरीर को पका दिया काल ने, देखो देखते देखते सारे बाल पकते पकते सफेद हो गए, एकदम रुई की तरह, कपास की तरह पक रहे हैं। कौन पका रहा है? काल शब्द का अर्थ है परमात्मा ईश्वर। कालोश में लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त। मैं काल का भी महाकाल हूं, भगवान कहते हैं, जिस काल को तुम देख रहे हो, सारी दुनिया जिस काल के आगे दौड़ रही है, मैं उसका महाकाल हूं। काल तो भगवान ही है, इसलिए कृषि गर्भ आदि भगवान के द्वारा ही पकते हैं, ईश्वर ही पका रहा है उनको, उन्हीं से पकते हैं। तद्वद आत्मविचारोपि शनै कालेन पच्यते, इस प्रकार से जो आत्मविचार का बीज डाल दिया है, ब्रह्मबोध का जो विचार बीज डाल दिया गया है, वो भी समय आने पर ही पकेगा। अभी सुन रहे हैं ना, पक्की बात है, खेत में बीज डल गया है, फसल अभी कटे या न कटे, फल हाथ में आवे या ना आवे, लेकिन फसल बो दी गई है, और निश्चित रूप से ये विचार एक न एक दिन आत्म साक्षात्कार करवा करके ही रहेंगे, क्योंकि बीज डाल दिया गया है। बोले बाद में कौन देखता है कि इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। कल परसों प्रवचन में सुना रहा था, कर्तो सुप्ते जागृतमसि फल योगे कर्तुमताम। अरे कर्म सुप्त हो जाने पर भी, यज्ञ सुप्त हो जाने पर भी, उस यज्ञ कर्म का जो फल देने वाला है वो जागता रहता है। वो कौन है? भगवान शिव है, वो परमात्मा, वो ईश्वर है, वही काल है जो उस कर्म का फल देने के लिए जागता ही रहता है। आज जो ब्रह्म विचार कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, ये ब्रह्म चिंतन का फल ब्रह्म साक्षात्कार अवश्य होगा, कौन कराएगा? बोले वो परमात्मा ईश्वर के अनुग्रह से होगा। वहां ईश्वर अनुग्रह बहुत बड़ा काम करता है, वो काल ही पकाएगा अपने चिंतन को, उसी के अनुग्रह से काम होता है। इसलिए उपनिषद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया है, वो नयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेदया न बहुना श्रुते न यमय वैश वृणोते तेन लभ्य तशेष आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। सुंदर मंत्र आया है, आत्मा प्रवचन से नहीं मिलेगा, बोलने वाला जिंदगी भर बोलता रहो। न मेधया न बहुना श्रुते न, खूब बुद्धि लगा लगा करके तर्क वितर्क से चिंतन करते रहो, नहीं मिलेगा। जरूरी है क्या मिल जाए? मिलता तो सभी को मिल जाता, प्रवचन वाले को पहले मिलता, समझ के सुनने वाले को पहले मिलता। कहते नहीं नहीं बार बार नहीं सुने तो न मिलता। वो बोले खूब सुन लो भाई, नयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, बहुना श्रुते न अयम आत्मा न लभ्य है। बहुत बार श्रवण करने से भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब हताशा होगी। फिर क्यों करें? कहा हताश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने के लिए बात नहीं कही गई है, इसके पीछे एक बहुत रहस्य है। यम यव एष वृणोते तेन लभ्य, जो वर्ण कर लेता है उसी के द्वारा वह प्राप्त होता है, और उसको ही उसकी प्राप्ति होती है या उसको वो स्वयं प्राप्त होता है। वर्ण के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जाता है। ये वर्ण है बार बार का अभ्यास, चिंतन चिंतन चिंतन। अभी तो सारा सिस्टम बदल गया, पुराने जमाने में ऐसा होता था दांपत्य जीवन से पहले बच्चा और बच्ची का जो एंगेजमेंट होता था, जब बात हो जाती थी और घर में बच्चे की चर्चा होती थी कि बच्चा सुंदर है, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, अच्छे परिवार का है, उसके विचार बहुत अच्छे हैं, जब बच्चे के संबंध में बच्ची श्रवण करती थी तो बच्ची उसको बार बार याद करती थी कि मेरा होने वाला पति ऐसा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा बुद्धिमान है। गांव में तो हमने देखा है कि जब बारात चढ़कर के आती थी तब दूल्हे को वो वर घोड़ा होता ना, घोड़े पर चढ़ा हुआ वर को देखती थी कन्या, उस समय उसका मुंह दिखाई पड़ता था, दोनों मिलते तक भी नहीं थे। परंतु उसे होने वाली जो उसकी पत्नी है, उस वधु का उसके प्रति पहले से कितना भाव हो जाता है, मन से वो वर्ण कर ली होती है। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो तब किया जब वो भगवान रथ पर चढ़कर के आए, लेकिन सुन सुन करके ही भगवान कृष्ण का वर्ण कर लिया है कि नहीं। और जब रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को स्वीकार किया है। अब रुक्मणी जी के सामने भगवान ने जो अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति दी है, रुक्मणी जी के हाथ का खेल नहीं था, इसलिए तो ब्राह्मण को भेजना पड़ा कि कहीं एक तरफा तो स्नेह नहीं है, भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से यह बुद्धि जो रुक्मिणी है उस परमात्मा को वर्ण तो कर रही है, परंतु जरूरी नहीं कि परमात्मा अपना साक्षात्कार करवाई दे, वो स्वतंत्र सत्य है, जब चाहे तब देगा, अपना साक्षात्कार तब करवाएगा। यम यवेश वृणोते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम, जो उस आत्मा का वर्ण कर लेता है उस वर्ण के द्वारा ही वो परमात्मा प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य होगा। क्यों? जब उसने देखा कि इसने वर्ण किया है तो तस्य उस वर्ण करने वाले के लिए एष आत्मा तनोम स्वाम विवरणोते, वो अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता, वो प्रकट कर देता है। इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा का साक्षात्कार केवल प्रयत्न साध्य नहीं है, वो अनुग्रह की अपेक्षा रखता, अनुग्रह साध्य है। साधक अपने जीवन में प्रयत्न करता है और प्रयास निरंतर उसका अभ्यास, और जब अभ्यास में ईश्वर का अनुग्रह होगा तब जाकर के साक्षात्कार होगा। तो अपना प्रयास अपना चिंतन तो उसका चलता रहे, और जब ईश्वर का अनुग्रह होगा तो प्रतिबंध हटते ही साक्षात्कार हो जाएगा। वो तो परमात्मा पर स्वतंत्र है, वो अपना साक्षात्कार अपना स्वरूप अभिव्यक्त करे, उसके पहले हमें वर्ण की जरूरत है। यही बात यहां पर कहते हैं, काले ने, काल का अर्थ परमात्मा ही है। काले ने परिपच्यंते कृषि गर्भादेव यथा तदवत आत्म विचारोपी शनै काले कालेन पच्यते। जैसे कृषि गर्भ आदि समय से ही पकते हैं, अथवा समय का अर्थ ईश्वर ही करो कि ईश्वर के द्वारा जैसे पकते हैं, पकाने वाला तो ईश्वर ही, ये काल तो जड़े, ऐसे ही तदवत आत्म विचारोपी ठीक उस कृषि गर्भ आदि के समान ही ये आत्म विचार भी क्या है, कालेन शनै पच्यते, काल के द्वारा या ईश्वर के द्वारा धीरे धीरे ही पकते हैं। विचार जो की जो दृढ़ता होती है, परिपक्वता कहते हैं ना, वो धीरे धीरे ही तो पक रहे हैं, बार बार विचार करते 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 इस प्रकार से फिर जब ईश्वर का अनुग्रह होता है तो आत्म साक्षात्कार होगा। बहुवारं विचारितेपि तत्वे प्रतिबंध बलात् साक्षात्कारो न जायते इति एतद् वार्तिक कारैरपि निरूपितम् इति आह। कहते हैं विचार यहां किया है और कृषि आदि की तरह साक्षात्कार बहुत बाद में होगा, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा इसमें और भी प्रमाण है, वार्तिक कार इस बात को बोलते हैं, या यूं कहो कि फिर विचार यहां कर लिया तो साक्षात्कार क्यों नहीं हो जाता उस समय? बोले बीच में जो रुकावट है, प्रतिबंध है, इसको वार्तिककार सुरेश्वराचार्य महाराज वृद्धारण्यक उपनिषद में जो बहुत सुंदर वार्तिक उन्होंने लिखा है, उस वार्तिक में इस प्रसंग को वहां पर उपस्थित किया गया है कि यदि प्रतिबंध रहता है तो साक्षात्कार न भी हो, समय आने पर होगा। पुनः पुनर्विचारेपि त्रिविध प्रतिबंधतः न वेत्ति तत्त्वमित्येतद् न वेत्ति तत्त्वमित्येतद् वार्तिके सम्यगीरिताम्। पुनः पुनः विचारे अपि त्रिविध प्रतिबंधतः न वेत्ति तत्त्वमिति एतद् वार्तिके सम्यगीरितम्। ये बात वार्तिककार ने वार्तिक में सम्यक प्रकार से कही है कि पुनः पुनः विचारे अपि, बार बार विचार करने पर भी त्रिविध प्रतिबंधत तत्त्वम न वेत्ति, तीन प्रकार के प्रतिबंध के चलते तत्व को जानता नहीं है। ये बात वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने अच्छी प्रकार से वहां पर कही है कि विचार करने पर भी ये तीन प्रकार के जो प्रतिबंध है, कौन है तीन प्रकार के, आगे आएंगे इसका बहुत अच्छा विस्तार आएगा, उदाहरण के सहित बताएंगे, भूतकालिक प्रतिबंध, वर्तमानकालिक प्रतिबंध और भविष्यतकालिक प्रतिबंध, तीन प्रकार के प्रतिबंध बताएंगे। कोई पहले का प्रतिबंध है, कोई वर्तमान में प्रतिबंध है, कोई आगे तक के लिए प्रतिबंध है, और वो प्रतिबंध जो रहेगा, रुकावट रहेगी, तो साक्षात्कार विचार करने पर भी नहीं होगा। रुकावट वही बाधा है, वही संस्कार कर्म आदि, आगे आएगा बहुत अच्छे ढंग से आएगा, तीनों का विस्तार आएगा एक एक करके, ज्यादा करने की जरूरत नहीं यहां पर। तो तान एव वार्तिकाने उदाहरति, उन्हीं वार्तिकों को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कुतः तत्व ज्ञानम इत्यादिना भरतस्य त्रिजन्मम जन्म भी इति अंतेना, तीनों प्रकार के प्रतिबंधों का वर्णन आगे आने वाला है। अतितेनापि महिषी स्नेहेन प्रतिबंधतस्य शुरू हो रहा है, 41वें श्लोक से शुरू होगा, और ये आगामी प्रतिबंध स्याद वामदेव से मेरी तक एक न जन्मना क्षीणे भरतस्य त्रिजन्म भी, 45वें श्लोक तक, यहां तक तो शायद करवा पाऊंगा कि नहीं, पर बहुत सुंदर है। 41वें श्लोक से लेकर के 45वें श्लोक तक इन प्रतिबंधों का ही सुंदर विचार किया गया है, वर्तमानकालिक, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यतकालिक तीन प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। उसी को टीकाकार यहां बता रहे हैं कि उदाहरण के रूप में दिया, कुतस्तत् ज्ञानम इत्यादि न भरतस्य त्रिजन्म भी इतिना, क्यों नहीं हो रहा है ज्ञान है? तो 39वें श्लोक से उठा लो और 45वें श्लोक तक ले जाओ। यहां टीकाकार कह रहे हैं ये जो प्रसंग उपस्थित होने वाला है सामने, तत्र तावत पूर्वम अनुत्पन्नस्य ज्ञानस्य इदानीम उत्पत्तौ कारणम पृच्छति। कहते हैं कि उस समय जो पूर्व में अनुत्पन्न ज्ञान है, उस अनुत्पन्न ज्ञान का जो ज्ञान पैदा हुआ ही नहीं है, इदानीम उत्पत्तौ कारणम, अब उत्पन्न हो जाता है, पहले नहीं हुआ अब ज्ञान हो रहा है, बाद में हो रहा है, उसका कारण पृच्छति, कारण पूछा जा रहा है इस अगले श्लोक में 39वें श्लोक में कि पुनः पुनः विचार है। उस समय तो बार बार विचार किया था और फिर भी तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, और अब यहां उत्पन्न कैसे हो जाएगा? जैसे बार बार अध्ययन करते समय खूब दोहराया या पेपर देते समय बेचारे का माथा ही गर्म हो गया याद करते करते, तो भी याद नहीं हुआ और बाहर निकलते फिर क्यों याद आ गया? उस समय तो नहीं हुआ, अब कैसे हो गया? वही यहां पर बता रहे हैं। कहते हैं तत्र तावद, उस समय जब जरूरत थी और आवश्यकता थी कि याद करना, तब तो अनुत्पन्न ज्ञान रहा, वो स्मृति हुई ही नहीं, ज्ञान हुआ ही नहीं, और इदानीम उत्पत्तो, इस समय उसकी उत्पत्ति हो गई, उसके प्रति कारण क्या है उसको पूछा जाता है अगले श्लोक में। वो कारण ही पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं यहां पर। प्रश्न कल करें, आज तो यहीं छोड़ दो, प्रश्न और उत्तर साथ ही उठाएंगे। प्रश्न कर भी देंगे तो फिर कल वापस इसी को दोहराना पड़ेगा, हैं? तो डबल मेहनत होगी कि नहीं? मेहनत होगी, ये मेहनत तो जिंदगी भर, डबल क्या तिबल क्या, जिंदगी भर करते रहो, ये शास्त्र बोल रहा है। इसको मेहनत मत समझो, ये अपनी साधना है, जितना करो उतना कम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।